मार्लम इंटरव्यू फॉर्म आगे एक्ट का मूल्यांकन 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का कोई हल न हुआ और न ही उसे हल कर सकते थे। लॉर्ड मार्ले ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उपनिवेशों का स्वशासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वह भारत में संसदीय अथवा उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के पूर्णता विरुद्ध था। वास्तव में उसने एक निरपराध प्रत्याख्यान दे दिया था जिसमें यह कहा गया था कि यदि यह कहा जाए कि सुधारों से इस अध्याय द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित की जा सकती है तो कम से कम मेरा इससे संबंध नहीं है। इन सुधारों ने भारतीय राजनीति में कुछ समस्याएं उत्पन्न की। इन सुधारों एक ऐसी समस्या मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्र की थी जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इससे उसके चारों एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए हैं जिसे उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया गया, जिसे शताब्दियों से आरंभ हुए तो तथा मिलने की ओर किए गए सभी प्रयत्न पूर्ण रूप से बदल दिए गए। आरंभ में ये प्रतिरोध छोटे छोटे थे क्योंकि चुनाव मंडल छोटे थे, किंतु जो जो मताधिकार बढ़ता चला गया एक राजनीतिक तथा सामाजिक मंडल का समस्त वातावरण दूषित हो गया। एक ऐसे रोग की नई जो समस्त शरीर को प्रभावित कर देता है। उनके राजनीतिक महत्व के लिए मुसलमानों को न केवल पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया अपितु उनके साम्राज्य के प्रति सेवाओं के लिए उन्हें अपनी संख्या से कहीं अतिरिक्त प्रतिनिधित्व दे दिया गया। यहाँ पर भी यह समाप्त नहीं होती थी। देश में अन्य धार्मिक इकाइयां इस अन्याय को कैसे सहन कर सकती थी? इसमें कुछ ने साम्राज्य की अधिक अच्छी सेवा करने का दावा किया और फिर भी उसे हम कुछ विशेष रियायत नहीं मिली थी। इस प्रकार सिखों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया और 1909 में उन्हें भी विशेष मत प्रतिनिधित्व मिल गया। यह अन्य जातियों के लिए भी हरी झंडी थी। इस प्रकार हरिजन भारतीय ईसाई यूरोपिया तथा एंग्लो इंडियनों को भी 1935 के अधिनियम के अनुसार पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। शताब्दियों से जो लोग सम्मिलित रूप से रह रहे थे और जिनमें राष्ट्रीय एकता की भावना बन रही थी वह एक ही बार में समाप्त हो गई। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, माइंटो मार्ले सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। के मुंशी के अनुसार इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। 1918 में प्रकाशित हुई भारतीय संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में कहा गया था, यह पृथक चुनाव मंडल इतिहास की शिक्षा के विरुद्ध है। हम धर्मों और वर्गों को जीवित रखते हैं जिसे ऐसे शिविर अस्तित्व में आते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं और उन्हें एक नागरिक के रूप में सोचने की शक्ति प्रदान नहीं करते अपितु पक्षपाती बनने को प्रोत्साहित करते हैं। इससे विद्यमान परिस्थितियों को अपरिवर्तित रहने का अवसर मिलता है और स्वशासन के सिद्धांत के विकास होने में रुकावट आती है। लॉर्ड मार्ले ने सत्य लॉर्ड मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत को बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। सुधारों को कार्यान्वित करते हुए बहुत ही गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था, जिससे सरकार की विवेकहीन अनुत्तरदायी आलोचना की जाने लगी। भारतीय नेताओं ने विधान मंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना लिया इस विचार से कि उन्हें उत्तरदायित्व निभाना ही नहीं पड़ेगा, वे केवल आलोचक तथा अनुत्तरदायी बने रहे। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट हो जाती थी कि जनप्रतिनिधित्व की प्रणाली एक प्रकार से छलनियों में से छालने की प्रक्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मंडल का चुनाव करते थे और ये चुनाव करते थे और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषदों का चुनाव करते थे। जैसा कि 1918 के संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया, जो व्यक्ति प्राथमिक चुनाव में भाग लेता है और जो व्यक्ति विधान मंडल में बैठता है उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं और प्रारंभिक मतदाता के मत का विधान परिषद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी अवस्था में कोई उत्तरदायित्व नहीं है और न ही मतदाताओं को जो नाम मात्र मत डालते हैं और कोई राजनीतिक शिक्षा नहीं होता है। वह कार्य जिसे ऐसा चुनाव मंडल अस्तित्व में आए जो उत्तरदायी सरकार का बोझ उठा सके यह तो अभी करने को शेष पड़ा है। 1909 के सुधार भारत के लिए छाया मात्र ही थे, वास्तविकता में वो कुछ नहीं थे। इसे प्रभाव तो मिला किंतु शक्ति नहीं। लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग की थी परंतु मिला था केवल हितकारी निरंकुशवाद। साम्राज्य की बहुमत बेक्रियाँ उसी प्रकार बनी रही जैसे पहले थी। इस संबंध में आर कुपलैंड ने कहा है, 1909 के अधिनियम ने 1861 के आरंभ में हुए संवैधानिक विकास को प्रतिनिधि सरकार के द्वार तक ला दिया, परंतु यह विचार कि यह सब वही था जो इंग्लैंड अथवा उसके उपनिवेशों में हुआ उसे अंग्रेजी राजनीतिज्ञों ने तथा प्रशासकों ने बार बार अस्वीकार कर दिया। विधान परिषदें अभी भी दरबार का ही स्वरूप थे, संसदें नहीं थी। 1892 में 1909 में भी सुधार के लाने वाले उदारवादी तथा रूढ़िवादी दल ने लोगों ने लॉर्ड मैकाने के 1833 के विचार से सहमति प्रकट की कि भारतीय संसदीय व्यवस्था के योग नहीं है। जैसा कि लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड सभा में स्पष्ट कहा था, यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्य भावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं होगा। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा ये प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय पेपर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास के लिए की गई है।